एक बात अनोखी आज लखी,
एक बात अनोखी आज लखी,
एक बात अनोखी आज लखी,
एक बात अनोखी आज लखी।
यहाँ कमला वैभव देख थकी,
यहाँ कमला वैभव देख थकी,
यहाँ कमला वैभव देख थकी,
यहाँ कमला वैभव देख थकी।
अष्ट सिद्ध नौ निधि सखी,
यहाँ अष्ट सिद्ध नौ निधि सखी,
यहाँ अष्ट सिद्धि नौ निधि सखी,
यहाँ अष्ट सिद्धि नौ निधि सखी।
नद आंगन दे
बिखर गए हो ब्रज गलियन में,
मच रही लूट ब्रज रसिकन 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 में।
और लूट गए कौन भैया?
हाँ भैया,
अजी लूट गए कुमार रिझवार, रिझवार लाला के दर्शन
गए कुमार रिझवार, रिझवार लाला के दर्शन करिया में।
चलो
आइए
ओ द्वार लाला के दर्शन करिया में,
चलो नंद जी की द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया में,
चलो नंद जी के द्वार के आनंद भयो जय कन्हैया।
आइए
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो हाथी जी ने घोड़ा जी ने, हाथी जी ने घोड़ा जी ने
और जी ने पाल की,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की।
लालन को हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा
भोले नंद पाल की,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की,
आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की।
कृष्णचंद्र भगवान की कन्हैया लाल की
बाल कृष्ण देव की
जय हो। बाल कृष्ण लाल की
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यशोदोत्सङ्गलालिताय श्रीनन्दकुमाराय नमः। यथालवलोपचारमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। लावुके भैया की
जय।
कन्हैया लाल की
जय।
माखन के चुरैया की
जय।
नंद के छोना की
जय।
नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का महोत्सव मनाया गया। अब आगे की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार भगवान के पिता नंद जी वार्षिक कर जमा कराने के लिए मथुरा गए तो वहां वसुदेव जी के साथ उनकी अनायास भेंट हो चुकी। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा कि हे नंद जी, बहुत दिनों के बाद आज आपके दर्शन हुए हैं। प्रेमी लोगों के मिलने से न जाने कितनी चिंताएं दूर होती है। और ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा, घर गृहस्थ में कितने ही चिंताओं का एक समुदाय होता है जो प्रेम के प्रवाह से बह जाता है। नंद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, मैं आपके बारे में सोचता हूं तो मुझे बड़ा विचार आता है कि आपके अंत में कन्या हुई, उसको भी कंस ने मार दिया। वसुदेव जी ने कहा, नंद जी यहां मथुरा में ज्यादा मत ठहरो, अब आप ब्रज में पधारो और वहां की स्थिति को संभालो। नंद अपने साथ के गोपों को लेकर वसुदेव जी से मिलकर ब्रज की ओर रवाना हो गए हैं। इधर न जाने क्या बात हुई, नंद जी के मन में तरह तरह की अनिष्ट की आशंकाएं हुई और उनको उस समय कोई दूसरा प्रतिकार नहीं दिखाई दिया। वे बड़े सच्चे भाव से हरिम जगाम शरणम भगवान की शरण हो गए। इधर नंद बाबा तो गए हुए थे, पीछे से इनके घर में पूतना आई, इतना अच्छा रूप बनाकर मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो। कृष्ण की सेवा में रहने वाली कई गोपियां थी, उन्होंने देखा कि यशोदा के बालक को देखने के लिए वैकुंठ से लक्ष्मी आई होगी। सब अपने अपने काम में लग गई, यशोदा जी भी अपने काम में लगी हुई, और वो बालक के पलने के पास आई और हे परीक्षित, जिस प्रकार किसी बालक को ये पता नहीं चलता कि मैं जिस कोमल कोमल डोरी का स्पर्श कर रहा हूं वो सांप ही है, इसी प्रकार पूतना को ये मालूम नहीं चला कि मैं जिसको भुलाने के लिए चल रहा हूं वो अंतर्यामी है, सबकी बात जानने वाला है। अनंत भगवान को उन्होंने गोद में लिया और गोद में लेकर अपने स्तन पर लगाया हुआ जो हलाहल जहर था, वो जहर से भरा हुआ उसका स्तन वो कृष्ण भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान ने देखा कि जहर पीने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम तो अमृत पीने का और अमृत पिलाने का है, जहर पीने का काम शंकर का है। तो उन्होंने रोष को याद किया, माने शंकर को याद किया, और रोष सहित उन्होंने उसके स्तन को लेकर मुंह में लेकर उसको पीना चालू किया। अब वो इतने कठोरता से उसे पकड़ लिए, मजबूती से पकड़ लिए भगवान, इतनी पीड़ा हुई पूतना के, पूतना भूल गई अपने बल को और उस समय में केवल सामुन चमुंचा लमिति प्रभाषिणी, अरे बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी। भगवान दूध पी रहे हैं और वो मनी मन में कह रहे हैं कि पूतना जी मेरे यहाँ सबसे बड़ी कमी यही है कि मैं पकड़ना ही जानता हूँ, छोड़ना नहीं जानता हूँ। आज तक मैंने किसी को पकड़ा है, उसको छोड़ा नहीं है। ये पूतना कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। जिस समय में भगवान वामन बने हुए राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे थे, तो वहां बलि की बेटी रत्नमाला बैठी हुई थी। उस रत्नमाला ने देखा कि संसार में बेटे तो लोगों के बहुत होते हैं, परंतु ये छोटा सा बालक आ रहा है, ऐसा मेरा बेटा हो, ऐसे को मैं गोद में रखूं, खिलाऊं पिलाऊं, तो मेरा माता होना सफल हो जाए। और वे ही जब विष्णु निकले, त्रिविक्रम बने, तो मन में ये बात आए कि ओहो, जिसको मैं छोटा बालक समझ करके बेटा मानना चाहती थी, यह तो हमारे पिता का शत्रु निकला है। तो उसके भाव दूसरे हो गए। वही रत्नमाला भगवान अंतर्यामी सबके भावना को जानने वाले हैं। उन्होंने देखा कि भाई, जब इसने हमारे को एक बार बेटा मान लिया है और गोद में लेने की इसने इच्छा व्यक्त कर ली है, तो अब ये काम भी पूरा करना है। तो वही रत्नमाला पूतना बनकर आई, भगवान को गोद में ली थी और उनको दूध पिलाना चालू किया। दूध तो था क्या, उसके पास तो जहर था, लेकिन उसका पिछले जन्म का जो मधुर भाव था, भगवान ने उसे स्वीकार किया। अब वो उसका सुंदर रूप था वो हट गया और वो पास के गोष्ठ में चली गई। बड़ा विकराल उसका रूप, भगवान उसके जब तक प्राण नहीं निकले तब तक उसको छोड़े नहीं, और अंत में वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई और उसके प्राण पंख उड़ गए। जिस समय में वो वहां गिरी है, हे परीक्षित, 6 कोस तक उसका शरीर बिखरा हुआ पड़ा था। उसके दाढ़े थी वो हल्के समान प्रतीत हो रही थी। उसके नाक के अंदर छिद्र है, वो पर्वत की कंदरा के समान दिखाई दे रहा था और उसके स्तन पर्वत खंड के समान दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें गहरे गहरे कुएं के समान दिखाई दे रही थी और हाथ और पैर कोई नदी के ऊपर बहुत बड़ा पुल बनाया गया हो ऐसे भी दिखाई दे रहे थे। उस समय में भगवान श्री कृष्ण उनके स्तनों पर लटके हुए हैं। पूतना मर गई है। उसके विशाल आकृति को देखकर गोप और गोपियां सब डर गए और तत्काल दौड़े दौड़े गए और जाकर के उस बालक को पूतना की छाती से अलग किया और अलग करके यशोदा और रोहिणी ने अपने हाथ में उस बालक को लिया। गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया। याद रखना, बहुत आवश्यक प्रसंग, बहुत जरूरी प्रसंग चल रहा है, ध्यान देना आप। और फिर गाय की पूंछ लेकर के उस बालक के चारों तरफ घुमाई गई। गाय का खुर का जो रजकण है, माने मिट्टी है, उस मिट्टी को भगवान के सिर के ऊपर रखा, गौमूत्र से स्नान कराया और फिर वे सारी की सारी गोपियां मिलकर के भगवान का नाम ले लेकर के उस बालक की रक्षा कर रहे हैं कि अजन्मा भगवान इनके चरणों की रक्षा करे, मणिमान भगवान इनके घुटनों की रक्षा करे और जघन स्थल की रक्षा यज्ञ भगवान करे, कमर की रक्षा अच्युत भगवान करे, इसके पेट की रक्षा हयग्रीव करे, इसके हृदय की रक्षा केशव करे और सूर्य भगवान इनके कंठ की रक्षा करे और सिर की रक्षा ईश्वर करे, मुख की रक्षा उरक्रम करे, चक्र लिए हुए भगवान हरदाम इनकी रक्षा करते रहे, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करे, प्राणान नारायण अवतु और इसके प्राण की रक्षा नारायण करे, पृष्णिगर्भ इसकी बुद्धि की रक्षा करे, खेलते हुए की रक्षा माधव करेंगे, चलते हुए की रक्षा वैकुंठ करेंगे और बैठे हुए की रक्षा लक्ष्मीपति विष्णु करेंगे, खाते हुए की यज्ञ भूख भगवान रक्षा करेंगे, जितने डाकनी यातनी पिशाचनी कूष्मांड और बालकों के और ग्रह है, भूत प्रेत पिशाच आदि, इन सब से रक्षा भगवान का नाम है वो करेगा। माने सारे संसार की रक्षा करते हैं भगवान और भगवान की रक्षा करता है भगवान का नाम। इसलिए नाम सबसे ऊंचा, वो भगवान की भी रक्षा करने वाला है, तो हमको भी भगवान का नाम लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रेम से बंधी हुई वे गोपियां श्री कृष्ण की रक्षा के लिए तरह तरह से उपाय कर रही हैं। आहा, भगवान उनकी गोद के अंदर, कभी किसी की गोद में, कभी किसी की गोद में खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, उनका प्यार देख रहे हैं। इतने में नंद बाबा अपने साथियों के साथ मथुरा से ब्रज में आए। उन्होंने देखा कि क्या बात है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कोई जला रहे हैं, क्या बात है। जला भी कैसे रहे, पूतना का शरीर था उसको काटा गया, काट काट करके शरीर के टुकड़े किए और फिर चिता बना करके उसमें उसको जलाया गया। हे परीक्षित क्या बतावे। लोगों ने पूतना को यही समझाया राक्षसी है, परंतु मरते समय में भगवान का अंग संग प्राप्त करने के कारण उस पूतना में इतनी दिव्य सुगंधि आई उसके उसके शरीर के जलाते समय, दूर दूर तक कोसों तक मानो अगर जल रहा हो, सुगंधित पदार्थ जल रहे हो, ऐसे दूर तक सुगंधि फूटी। तो नंद बाबा ने पूछा लोगों से, सुगंधि काय की आ रही है, किसी को जला रहे हैं, अरे मुर्दे की तो दुर्गंध आया करती है, सुगंध किस बात की। जब वे सब पास में पहुंचे, सब लोगों ने हालचाल सुनाया, तो नंद बाबा दौड़े दौड़े गए और लाला को अपनी गोद में लिए, उसके मस्तक को चूमा, मूर्धनि उपाग्रहाय परमा मुदम लेभे कुरुद्वह, और फिर उनके मन में अपार प्रसन्नता हुई, बालक को छाती से लगाया। क्या बतावे, ये पूतना की मुक्ति की कथा है, बड़ी विचित्र कथा है। बड़ी श्रद्धा के साथ जो मनुष्य सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान गोविंद में उसका स्वाभाविक प्रेम हो ही जाता है। राजा कहने लगे, महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान की बाल लीला का एक प्रसंग सुना है उसमें ही, तो इन्होंने तो तरह तरह से काम किए होंगे वहां। देखो हम आपको बता दें कि हमें समय की चिंता नहीं है, भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है, ज्यों ज्यों भगवान की ये बाल लीला हमारे सुनने में आ रही है, त्यों त्यों उसके साथ प्रेम करने का हमारा मन लालायित हो रहा है। बड़ी मनोहर उसकी कथाएं हैं, आप और कोई बाल चरित्र हो वो सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो परीक्षित, एक बार की बात है, लाला के करवट बदलने का एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। संयोग से वो दिन वही था जिस लग्न में उनका जन्म हुआ था, उसी लग्न में करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। नंद जी के घर पर गाने बजाने वाले लोग बैठे हुए थे, ब्राह्मण लोग भी आए, स्वस्ति वाचन किए। यशोदा जी नहा धोकर के सबके स्वागत सत्कार में लगी हुई थी और वह मनस्विनी आए गए अतिथियों के सत्कार में लगी हुई थी। छोटे से बालक भगवान वहां सोए हुए थे और उनको एक झोली के अंदर एक छकड़े के वहां टांग रखा था, बैलगाड़ी के वहां टांग रखा था। नैवा शृणोद्वई, वहां पर उनकी आंखें खुली, माने भगवान बता रहे हैं कि मैया तुम कौन से काम में लग गई, मैं स्वयं समस्त कर्मों का फल तुम्हारी गोद में हूं, मुझे तुमने कहीं टांग दिया और घर गृहस्थ में लग गई, तो अब इसका क्या फल होता है सो मैं तुमको बता देता हूं। तो ऐसा विचार करके भगवान हाथ पैर पीटने लगे, रोने लगे और दूध के लिए लालायित हुए, लेकिन कौन सुने इतने कोलाहल में उस छोटे बच्चे की आवाज। तो भगवान हाथ पैर यूं पटकने लगे, इतने में ही वो छकड़ा था, उस छकड़े को भगवान ने लात से ऊंचा कर दिया। छकड़े के अंदर बहुत दही था, बहुत छाछ था, मक्खन था, वो सब का सब पात्र टूट गए, मिट्टी के पात्र थे फूट गए और सारा का सारा गोरस था वो बह गया। जब इस प्रकार से सारे बर्तनों की घड़घड़ाहट की आवाज आई और छकड़े के उलटने की आवाज आई, तो सारे के सारे गोप और गोपी दौड़े दौड़े आए, देखा बालक है वो तो झोली के अंदर झूल रहा है। पूछा, अरे भाई इसको किसने उलट दिया। तो पास ही खेलने वाले बालकों ने कहा कि हमने देखा है, रुदता आने न पादे न क्षिप्तम एतन न संशय है, इस बालक ने अपने पैरों से उसको उलट दिया है, इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु वो बालक की बात सुनकर के, बालकों की बात सुनकर के गोप वगैरह कोई श्रद्धा नहीं किए कि इतना बल हो सकता है छोटे से बालक में छकड़े को उलट दे। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी गई, झोली में से बालक को लिए और लेकर के फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, उनका आशीर्वाद लिया और ब्राह्मणों को आशीर्वाद लेने के बाद गायों का पूजन करवाया, गाय की जो पूंछ है उससे बालक का स्पर्श करवाया और बालक के अभ्युदय के लिए तरह तरह से व्यभिचार करने लगी। देखो एक बार की बात है, माँ बेटे दोनों बैठे हुए थे, माता की गोद में छोटे से कृष्ण थे, उस समय भगवान को जाने लीला करने की क्या सूझी, वो बैठे बैठे इतने भारी हो गए, कि माँ ने देखा कि अब इसको सुला दिया जाए, माँ उनके भार को सह नहीं सकी। कहते हैं न सहे गिरिकूटवत, एक पर्वत के समान बहुत भारी हो गए भगवान। तो माँ ने उनको जमीन पर रख दिया, वो अपने काम में लग गई। इतने में ही जोर से एक आंधी आई। आंधी क्या आई, वो तृणावर्त आया था आंधी के रूप में। वो तृणावर्त इतने जोर से आया, कंस का भेजा हुआ था, इतने जोर से आया कि सब लोगों को दिखना बंद हो गया। और वह आकर के उस बालक को, कृष्ण को, उसने हवा में उड़ा लिया और उड़ा करके बहुत ऊंचा ले गया। भगवान श्री कृष्ण भी उसके साथ में उड़ गए और ऊपर जाकर के उस तृणावर्त का गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के कारण तृणावर्त का सांस लेना बंद हो गया, आंखें निकली आई, जेब उसकी बाहर आ गई और उसका बथुलिय का रूप था वो तो खत्म हो गया और अपने असली रूप में आकर के धड़ाम से जमीन पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए। तृणावर्त के मर जाने के बाद उनके गले पर लटके हुए छोटे से कन्हैया को देखा तो दौड़े दौड़े गोपियां सब वगैरह आई और इतना यशोदा जी रो रही थी कि मेरा लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। इतने में ही जब वो धड़ाम से गिरा और उसके गले में लटकते हुए अपने बालक को देखा तो चीखती हुई वे गई और जाकर बालक को अपनी गोद में लिया और बालक हंसने लग गए। यशोदा जी के जान में जान आई, ऐसी उनकी लीलाएं हुई थी। एक बार की बात है, यशोदा जी की गोद में कन्हैया बैठे हुए थे, केवल वो दो ही दो थे। यशोदा जी ने दूध पिला दिया, दूध पिलाने के बाद बालक हंसने लग गए। यशोदा जी ने उनका बहुत प्यार किया। उस समय में तस्य रुचिर स्मितिम, भगवान के छोटे से मुख को, मुस्कुराते हुए मुख को यशोदा जी ने देखा। थोड़ी देर में भगवान ने उबासी ली, अब छोटा सा भगवान का मुख और उससे उन्होंने उबासी ली। उबासी लेने से, जम्भाई लेने से मुंह खोलने पर जब वे यशोदा जी मुंह के अंदर देखने लगी तो देखा कि इसमें तो आकाश है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, बड़े बड़े द्वीप हैं और बड़े बड़े पर्वत हैं, जंगल हैं। इन सबको देखा तो एकदम घबराई। घबराई तो भगवान ने वापस अपना छोटा सा मुंह बंद कर लिया और यशोदा जी की स्मृति में ये बात रही नहीं कि मैंने इसके मुख में क्या क्या देखा था। ऐसी भगवान की लीला हुई थी। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंशियों के पुरोहित थे, वे घूमते घामते नंद जी के ब्रज में आए। नंद जी ने कहा कि ओ गर्गाचार्य जी, आप जैसे महात्मा हैं वह तो हम दीन चेताओं पर बहुत दया करने वाले हैं। आप ज्योतिष को जानते हैं, ज्योतिष है वो साक्षात आप लोगों का नेत्र है, अतीन्द्रिय ज्ञान बताने वाला ज्योतिष है, माने आगे की बात जो हम नहीं जानते हैं उसको ये ज्योतिष बताया करता है। हमारे दो बालक हैं गर्गाचार्य जी, जरा उन दोनों बालकों की जन्म कुंडली बना दो, ध्यान देना वो भगवान की जन्म कुंडली बन रही है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, देखो नंद जी, मेरे पीछे कंस के गुप्तचर लगे हुए हैं। जहां जहां बालकों का नामकरण संस्कार कराने जाता हूं या बालकों की कुंडली में बनाता हूं, वहां वहां गुप्तचर मालूम करके और उन बालकों को मार दिया करते हैं। तो कहा कि देखो देखो गर्गाचार्य जी महाराज, हम लोग हल्ला नहीं करेंगे, चुपचाप आपको गौशाला में ले चलते हैं। गौशाला में गायों को चारों तरफ बैठा करके और वहीं पर नामकरण संस्कार आप कर दीजिए, किसी को कहेंगे नहीं, क्या अच्छी बात है। अब नंद बाबा बैठ गए, पास में यशोदा जी बैठ गई और इधर रोहिणी जी बैठ गई। रोहिणी जी की गोद में बलराम जी है, यशोदा जी की गोद में कन्हैया है और बाकी का कार्य नंद बाबा कर ही रहे हैं और सब बैठे हुए हैं। गर्गाचार्य जी अब एक एक का नामकरण संस्कार करने का विचार कर रहे हैं। पहले उन्होंने रोहिणी जी की गोद में जो बालक था उसका हाथ देखा और उसका लग्न वगैरह बनाए तो कहने लगे, देखो जी नंद जी, ये जो रोहिणी जी की गोद में बालक दिखता है ये बल के अंदर बहुत श्रेष्ठ होगा, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। लोगों को आनंदित करेगा इसलिए इसको लोग राम कहेंगे। यदुवंशियों को ये मिला करके चलेगा इसलिए इसको संकर्षण कहेंगे। बड़ा अच्छा ये आपका लड़का है, रोहिणी जी का लड़का बहुत अच्छा है। और ये जो यशोदा जी की गोद में है, क्या बतावे जी, ये तो बहुत नटखट है। मैं आपको एक जन्म की क्या बताऊं, इसके तो कितने ही जन्म होते हैं कि कभी जन्म होते ही नहीं है, ऐसा आपका ये लड़का है। कभी ये वसुदेव का लड़का रहा है, अतः लोग इसको वासुदेव के नाम से कहेंगे। ये तरह तरह से तरह तरह के युगों में अवतार लेता है, कभी तो सफेद बनता है, कभी लाल बनता है, कभी पीला बनता है, अभी देखो कैसा सांवला बना हुआ है। नाम और रूप अनंत है, और यूं देखा जाए तो इसके नाम और रूप है ही नहीं। देखो जी, मैंने इसकी कुंडली देखी है, इससे ऐसा लगता है कि जैसे पहले राजा लोग डाकुओं से पीड़ित होते थे, फिर भगवान की कृपा से उनका उद्धार होता था, उसी प्रकार से नारायण के समान गुण वाला ये आपका छोटा सा बालक है। और ये काला है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा, और वसुदेव जी का लड़का होने के कारण इसको लोग वासुदेव के नाम से भी कहेंगे। ऐसे वे दोनों का नामकरण संस्कार कराए हैं। भगवान छोटे से अपने मुंह में अंगूठा दिए हुए है, माँ की गोद में है, जबरदस्ती हाथ लेकर के जब हाथ देखा गया और कुंडली बनाने लगे तो माँ से कहा कृष्ण ने कि मैया ये तो मेरे जन्म की बात बता रहे, आप कहो तो इनके जन्म की बात बता दूं। क्या नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम गुरुजनों की बात बोलते हो। लाला की बात को सुनकर के गर्गाचार्य जी भी हंसने लग गए, नंद बाबा यशोदा जी सब हंसने लग गए और छाती से लगा लिया नंदा इन्होंने यशोदा जी ने, और फिर वो नामकरण संस्कार कराने के बाद अपने अपने स्थान पर चले गए। परीक्षित, थोड़े दिनों के बाद बलराम जी और कृष्ण दोनों थोड़े बड़े हुए और वे घुटनों के बल पर चलने वाले हुए। माँ ने इतना प्यार किया कि उनके चरणों के अंदर अच्छे अच्छे आभूषण पहना रखे थे, तो जब वे घुटनों से चलने लगते थे तो उनके पैरों के आभूषणों से रुनझुन की आवाज आती थी। ये माँ की गोद से सीधे गुडाले गुडाले चलते 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 एक घर से दूसरे घर में घुस जाते, गुडाले दूसरे घर से तीसरे घर में घुस जाते, और कभी कभी ब्रज का जो कीचड़ था उस कीचड़ को वे लगा लेते और वो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते। क्या बतावे, जिनका दिव्याति दिव्य अंगराग भी जिनके सामने फीका पड़ता है वे ब्रज का कीचड़ लगा करके इतने प्रसन्न होते और इतने आनंदित होते, और ऐसी उनकी शोभा होती कि उसको देख करके स्वयं कृष्ण भी हर्षित हो जाते थे। आहा, ब्रज का कीचड़ लगा है, ब्रज का कीचड़ नहीं है, मेरा असली अंगराग है, मेरे भक्तों की चरण धूलि इस कीचड़ में है, इसलिए भगवान के लिए तो वह अंगराग था। आप उन दोनों को माँ बुला लेती, नहीं आते तो हाथ पकड़ कर ले आती, ला करके नहलाती धुलाती और उनको दूध पिलाती थी। फिर वे बालक इतने चंचल कि चले जाते वे और जाकर के अपने बछड़ों को खोल देते, बछड़ों को खोल करके गायों से उनको मिला देते और दूध पिला देते थे। तरह तरह से उनकी चेष्टाएं होती थी लेकिन माँ के मन में कभी उकताहट नहीं होती थी। उज्जित गृह, उनके सारे घर गृहस्थ के काम छूट जाते थे, इनके हंसी को इनके दौड़ने को माताएं देख देख करके बहुत हर्षित होती। थोड़े से और बड़े हुए तो तरह तरह की चीज वस्तुओं से वो खेलने लग गए। अब भगवान गुडाले नहीं चल रहे हैं, अब चरणों से दौड़ने लायक हो गए हैं। अब जो ये दौड़ने लायक हुए, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर दौड़ते रहते थे, सीटी बजाते थे, और किसी के चलते ही छोटे से बालक को हाथ में लेकर उसके साथ दौड़ने लग जाते थे। तरह तरह से वे कार्य करते थे। उनकी इस लीलाओं को देख करके एक यशोदा नहीं, जितनी गोपियां थी सब की सब लट्टू हो गई थी। उन गोपियों के मन में ये बात आती थी कि आह, ये यशोदा के घर में ही क्यों रहता है, हमारे घर में भी आवे, हमारे घर में भी चोरी करे, और हम इसको चोरी करते हुए देखें तो इस बहाने से इसका संग हमको मिलता रहेगा। भगवान उनके घरों में जाते, घरों में जाकर के उनका माखन चुराते, माखन चुरा के भग जाते तो वे गोपियां थी, वे कृष्ण का दर्शन करने का भाव रख करके और यशोदा जी के घर में आती और यशोदा जी को आकर के कहने लगती कि देखो यशोदा जी, ये आपका कन्हैया है, बहुत चंचल है, ध्यान देना, वो ये कर तो रही है शिकायत और मन में आ रहा उनके बहुत आनंद। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयम् साध्वत्यथदधिपय कल्पित स्तेय योग माँ देखो यशोदा जी, ये आपका बालक हमारे घरों में घुसता है और बिना समय के ही बछड़ों को खोल देता है, और जब हम जाकर उस पर कुपित होती है तो उस समय में बहुत जोर शोर से उछल उछल करके हंस हंस करके हमारे सामने से भग जाता है, और फिर हमारे घरों में घुसकर जो मक्खन रखा हुआ है उस मक्खन को चुराता है, मक्खन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले ले करके चुराता है, साथियों को देता है। कोई बात नहीं, साथियों को देता है तो, लेकिन बंदरों को आह्वान करता है, एक अंगुली से इशारा करता है बंदरों को और उनको मक्खन दिखाता है, दौड़े दौड़े ये बंदर आते हैं और आकर के और मक्खन खाते हैं, इनको खूब लुटाता है। कोई पात्र यदि मक्खन से खाली रहता है तो ये उठा करके जोर से उसको पटक देता है और फोड़ देता है, इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो अरे गोपी, तुम जरा ऊपर उसको टांग दिया करो ना। कि ऊपर क्या टांगे, जाने विधाता ने इसको सारी अकल दे दी है, हम बहुत ऊपर इसको टांग देते हैं मटके को तो भी ये घर के अंदर, अब सामान तो कई प्रकार का होता ही है, वो ऊखड़ ले आता है, कोई पीठा ले आता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। क्या चढ़ गया तो क्या हुआ, और उसको ऊपर कर दो, और ऊपर क्या कर दे, हमारे घरों में लकड़ी रहती है, लकड़ी लेकर वह उस पात्र में छेद करता है, अब छेद करने से मक्खन आ जाता है और वो ले लेता है। तो अंधेरे में रख दिया करो, अंधेरे में क्या रखे, तुमने ऐसी ऐसी मणियों की लड़े इनके हाथ में बांध रखी है कि अंधेरे में जाकर ये प्रकाश से, अपने मणि के प्रकाश से देखता है कि मक्खन कहाँ है, और फिर वो मक्खन को ले लेता है, और फिर इस प्रकार से वो हम लोगों को परेशान करता है। इस प्रकार से कन्हैया पास में खड़ा है, गोपियां कन्हैया को देख रही हैं, यशोदा जी को बोल रही हैं, और आहा इतना चतुर है वो, ऐसी आकृति बनाया, ऐसी आकृति बनाया है माँ के सामने कि जैसे माँ ये सब झूठ बोल रही है, ये सब झूठ बोल रही है, मैं ऐसा हूं नहीं, मैं तो बहुत भोला भाला और सीधा साधा हूं। उनकी बात सुनकर के, उनकी शिकायत सुनकर के वो रोने लगते हैं पहले से ही, मानो माँ में हमको मारे नहीं। और जो ही माँ उनका प्यार करती है, प्यार करते समय मुंह तो उधर रहता है और शिकायत करने वालों के सामने अंगूठा करके कहता, कर लो शिकायत, हमारा क्या बिगाड़ते हैं। वो देखती है, अरे ऐसा होशियार बालक है ये। वस्तुतः परीक्षित वो शिकायत करने के लिए नहीं आती है, वो तो इस कृष्ण का मुख देखने के लिए आती है, कैसा सुंदर उसका मुखड़ा है। एक बार की बात है कि बहुत से सखाओं के साथ में ये कृष्ण खेल रहे थे, खेलते खेलते इसने मिट्टी खा ली। आप देखो मिट्टी खाई है भगवान ने, मिट्टी क्यों खाते हैं भगवान, मिट्टी को रजोगुण, ये रजकण कहलाते हैं, और रजोगुण भगवान ले रहे हैं, माने भगवान तो सत्वगुण से भी अतीत है, वो रजोगुण को स्वीकार करते हैं इसलिए कि राक्षसों का संहार करना है, और बिना रजोगुण के क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो राक्षसों का संहार नहीं होगा। तो वह मिट्टी खाने लगे, मिट्टी खाने लगे तो बालकों ने उसको धमकाया कि एक नहीं यार मिट्टी खाता है, तो उसके मुंह में तो मिट्टी थी, तो ले गए यशोदा जी के पास। यशोदा जी के पास गए, कहने लगे देखो मैया, ये आपका कनवा मिट्टी खाता है। तो यशोदा जी ने हाथ पकड़ करके कहा, क्यों है, कस्माद मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रह, अरे क्यों, क्या बात है, अकेला अकेले मिट्टी खाता है अकेले में बैठ करके, इसलिए हम तुमको भेजते हैं, ये देख तेरे सारे साथी बोल रहे हैं ना। तो भगवान कह रहे ना मैया सब झूठ बोलते हैं, ना हम भक्षितवान अम्ब है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सब झूठ बोलते हैं। कि यदि यही बात है तो मेरा मुंह देख लो। तो जो ही मुंह खोला तो उसके अंदर तो बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े द्वीप, सारा सारा भूगोल, वायु, अग्नि, तारे, ज्योतिष, चक्र, जल, आकाश और इंद्रियां और मन, ये सब दिखाई दिया, जीव काल स्वभाव ये दिखाई दिया। और यशोदा जी एकदम आंखें फटी रहेगी, क्या देख रही हूं मैं, क्या देख रही हूं, स्वप्न है कि देव माया है। इतने में देखा कि सारा ब्रह्मांड, उसमें पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर ये हमारा ब्रज, ब्रज के अंदर हमारा घर, हमारे घर में हमारे पतिदेव इसमें, और पतिदेव इसमें है, और इसके मुख में मैं भी बैठी हूं, और इसके मुख में मैं बैठी हुई इसी को गोद में लिए हुए बैठी हूं। अरे ये क्या तमाशा है। अहम ममासौ पतिरेशमेश तो ब्रजेश्वर से अखिल वित्त पासति, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। तो ऐसा विचार करके वो यो सोचने लगी कि अहो ये तो शायद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म की लीला ही हो सकती है, वे ही अपने में सारे संसार को रखते हैं और संसार में अपने को रख देते हैं, ये बात बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा उनके भाव पैदा हुआ, इतने में ही भगवान ने वैष्णवी माया फैलाई। एक ये वैष्णवी माया क्या है, भक्तों के अंदर एक मधुर रस का भाव पैदा करते हैं भगवान। भगवान में अनंत शक्ति है, जब भक्त भगवान का प्रेमी भक्त भगवान को अपना मानता है और भगवान की सब विशेषताओं को हृदय से हटाता है, तो भगवान उस भगवान का वो अपनापन का प्रेम बहुत उनको खींच लेता है, भगवान उससे आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि हमको कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वशक्तिमान इस प्रकार से माने। भगवान तो कहते हैं मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो, इस रिश्ते को आप स्वीकार करो। तो जब वो तत्व को जानने लगी, इतने में ही माधुर्य रस का ऐसा संचार किया कि वो भूल गई कि ये कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा है। उनका तो ये याद मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, और गोद में लिया और गोद में लेकर के उसको छाती से लगाया, झर झर उनके दूध बरसने लग गया। देखो भगवान ने कहा ना कि ना हम भक्षितवान अम्बे, मैंने मिट्टी को खाई नहीं है, ये भगवान की वाणी बिल्कुल सत्य है। माँ यदि खाया है तो मैंने मिट्टी को क्या खाया, सारे संसार को खाया है, और जब सारा संसार मेरे मुंह में रहता हुआ भी सुरक्षित है तो ये मिट्टी को मैं खा कहाँ गया, खाने के बाद तो अस्तित्व ही नहीं रहता, देखो अस्तित्व है ना। ये विचित्र बात भगवान ने कही, माने भगवान अपने ऐश्वर्य और माधुर्य दो में से माधुर्य को भगवान ऊंचा स्थान देते हैं, इस प्रकार से ये लीला बताए हैं। परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुवर ये बताओ कि नंद जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया, यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जन्मे तो कहां और इनकी गोद में ये खेलने लगे। कहते हैं देखो भाई, द्रोण नाम के एक वसु थे और धराउन नाम की उनकी स्त्री थी, इन दोनों ने ब्रह्मा जी के आदेश से तपस्या की थी, वे ही नंद और यशोदा बनकर के आए हैं और उन्होंने ही कृष्ण को खिलाया है। तो मैं तुमको दूसरी लीला सुना रहा हूं। कहते हैं एक बार की बात है, यह कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ है स्वयं दधि, ध्यान देवे, ये दही का बिलोना करना, घर की साफ सफाई करना, बर्तनों को मांजना और भोजन बनाना, ये बड़े बड़े नौकरों के रहते हुए भी उस जमाने में घर की मालकिन होती थी, अपने हाथ से किया करती थी। स्वयं भगवान की माँ है यशोदा जी, तो कहते हैं गृह दासीसु कर्मांतर नियुक्तासु, अपने घर में जितनी नौकरानियां थी उनको तो दूसरे काम में लगाया और स्वयं दही लेकर के दही का मंथन करने लगी, बिलोना करने लगी। बिलोना कर रही है, पास में कन्हैया सो रहा है और बड़े भीने भीने स्वर में कृष्ण का चरित्र वो बोल रही है, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका धीरे धीरे कीर्तन कर रही है। तो दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायते, उनको गाने लगी। देखो सुखदेव जी महाराज कभी कभी भगवान का स्वरूप तो बताते ही है, सर्वत्र ही बताते हैं, लेकिन कभी भक्त का भी स्वरूप बताते हैं। यशोदा जी कैसी है, एक रेशमी साड़ी पहन रखी है और उनकी करधनी है बड़ी सुंदर है, और पुत्र के स्नेह के कारण उनके दूध आ रहा है, और बिलोना करने के कारण से सारा शरीर उनका कंपित हो रहा है, उनके हाथों के जो आभूषण है उनमें आवाज आ रही है, कुंडल उनके हिल रहे हैं और मुख के ऊपर थोड़े थोड़े पसीने के कण आए हुए हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर रूप है यशोदा जी का, क्यों नहीं होगा, भगवान जिसको माँ कह करके बोलते हैं ऐसी यशोदा जी बिलोना कर रही है। इतने में ही भगवान जग गए और जगे हुए भगवान माँ की गोद में आ गए, कहा मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाओ, और गृहत्वा दधि मंथानम, और उन्होंने बिलोना करने वाली जो मंथानी थी उसको भी पकड़ लिया और उनके हाथ भी पकड़ लिए, डोरी भी पकड़ ली। पहले मुझे दूध पिलाओ माँ, मुझे दूध पिलाओ माँ, मुझे दूध पिलाओ। माँ ने कहा बेटा पिलाते हैं, पहले दही मथले, क्या नहीं मुझे दूध पिलाओ, देखा ये दूध तो पीने देगा नहीं। तब वो दूध पिलाने के लिए जो ही तैयार हुई इतने में ही दूध रखा हुआ था चूल्हे पर, वो दूध उफनने लग गया। तो जब वो दूध उफनने लग गया तो यशोदा जी भगवान को छोड़कर दूध की तरफ गए। भगवान ने कहा कि यशोदा जी, मनी मन में सोचा, यशोदा जी मेरे रहते हुए आपका दूध में प्रेम है, दही में प्रेम है, तो उस समय में देखा जहां इनका प्रेम होता है उस चीज को खत्म करना चाहिए। भगवान का तो कायदा ही है, पास में एक पत्थर पड़ा था, पत्थर लिया और दही का बिलोना था, उस दही के बिलोने को उन्होंने फोड़ दिया। दही के बिलोनों को फोड़ देने के बाद अब देखा कि अब माँ हमारे माँ है, वो अब हमारे को दंड देगी, तो वे वहां से दौड़े दौड़े गए। तो वो दही था वो फैल गया सब जगह, भगवान दौड़े तो उनके चरणों में वो दही लग गया। अब वो भगवान आगे दौड़े तो दही के चरण सब जगह अंकित हो गए, और दौड़ रहे भगवान आगे आगे, पीछे मुड़ करके जब देखा यशोदा जी ने कि हमारा दही का ये मटका बहुत पुराना है, इसको फोड़ दिया, तब यशोदा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चामटी ले ली, एक डोरी ले ली और पीछे पीछे वो गए दौड़ते दौड़ते। कहते हैं दौड़ते दौड़ते गए, जहां जहां उनके दही के चरण मक्खन के चरण अंकित थे वहां तक दौड़ते गए। अब भगवान आगे दौड़ रहे हैं, पीछे यशोदा जी दौड़ रही है, भारी उनका शरीर है। दौड़ते 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 बहुत दूर चले गए भगवान, तो पीछे दौड़ते दौड़ थक गई यशोदा जी। क्या रे कन्हैया तू ठहर जा, आज तेरी खबर मैं लेने वाली हूं। अनवंच माना जननी बृहद चलत श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा। कहते हैं उस समय में थक करके, और वो जब उनको पकड़ने लगी तो भगवान और आगे चले गए, तो क्या कन्हैया तू ठहर जा ठहर जा ठहर जा, तुझे आज मैं दंड दूंगी। लेकिन भगवान आगे गए, कह देख तुझे सतयु के भक्तों की सौगंध है, मत दौड़ अब। तो अभी वो दौड़ते रहे। देख तुझे त्रेतायुग के भक्तों की सौगंध है, तो भी दौड़ते रहे। देख तुझे द्वापर युग की सौगंध है, तो भी दौड़ते रहे। देख तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है, तो भी दौड़ते रहे। अरे कलयुग के अंदर जो ध्यान लगाने वाले हैं उनकी सौगंध है, तो भी दौड़ते रहे। कलयुग के अंदर और साधन करने वाले भक्त हैं उनको भी उनकी सौगंध कराई, तो भी दौड़ते रहे। अरे कलयुग में जो तुम्हारी लीला सुनेगा ऐसे भक्तों की सौगंध है, इतने में भगवान वहां पर रुक गए। और जो ही भगवान वहां रुक गए तो जाकर के यशोदा जी ने उनको पकड़ लिया। यशोदा जी ने पकड़ करके कहा कि तू बहुत उच्छृंखल हो गया है, तू बहुत दूर दूर तक दौड़ने लग गया है, ऐसा दौड़ने लग गया बड़ी मुश्किल से तू हाथ में आता है, अब मैं तुझे बांधूंगी। भगवान भी बंधते हो, आहा भगवान को बंधने में, जीव को मुक्त होने में आनंद आता है, तो भगवान को प्रेमियों के बंधन में बंधने में आनंद आता है। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम। अब वो भगवान तो उस समय में रोने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए भयभीत होकर के। तो माँ के मन में दया आ गई, माँ ने लकड़ी तो एक तरफ फेंक दी कि और रोएगा ये कहीं, और अपने हाथ में जो डोरी थी उस डोरी से उसको बांधने लगे। कहते हैं क्या बतावे परीक्षित, वो तो यशोदा जी को ही सुख मिला होगा बांधने का। वो बांधते हैं परीक्षित, जिसका न अंदर है न बाहर है न ऊपर है, जो नीचे है, जो किसी में भी समा नहीं सकता है, उसको यशोदा जी डोरी के अंदर बांधने लगे। बांधते बांधते जो भी कोई डोरी मिले तो उस डोरी को लिया और गांठ लगाई और फिर बांधे, तो दो अंगुल की छेती रह गई, दो अंगुल का अवकाश रह गया। तदपि द्व्यंगलम नूनम, देखा पास में एक ऊखल है, ऊखल से बांध देंगे। अब ये ऊखल है ना, ये ऊखल में शब्द आता है खल शब्द आता है। यशोदा जी ने कृष्ण को खल के साथ बांधा, माने इस खल की खलता समाप्त हो जाए और इसका बिचारे का उद्धार हो जाए, ऐसा विचार करके ऊखल से बांधा उनको। लेकिन बांधे तो जो भी कोई डोरी लेवे वो छोटी हो जाए। तो ये भगवान है ना, सबके लिए बंधने के लिए तैयार है, केवल थोड़ा सा अवकाश है, दो अंगुल की छेती है। दो अंगुल की छेती का अर्थ क्या है कि भाई एक तो राग और एक द्वेष, ये दो के कारण से भगवान जीव के यहां नहीं बंध रहे, नहीं तो वो बंधने के लिए तैयार है। भगवान ने देखा कि अब माँ है वो अब घबरा गई है, तो कहा अच्छी बात है माँ हमको बांध लो। तो वो बंध गए, और बंध गए तो भाई ऊखल से ले जाकर के माँ ने उनको बांध दिया। देखो आज तक ब्रह्मा जी जिसको नहीं बांध सके, शंकर नहीं बांध सके, लक्ष्मी नहीं बांध सके, और जो ब्रह्मा को आनंद नहीं आया, विष्णु को नहीं आया, जो शंकर को नहीं आया, लक्ष्मी को आनंद नहीं आया, वो आनंद आज गोपी को मिला है। भगवान की कृपा ऐसी मिली गोपी प्रसादम ले भी रहे। वो गोपी को इतना आनंद आया, इतनी कृपा प्राप्त की कि वे गोपी के बंधन में आ गए। देखो नायम सुखापो भगवान देहि नाम देव गोपिका सुत है, ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्तिमतामी है। परीक्षित सच मानो, ज्ञानियों को एक अखंड रस का आनंद मिल सकता है, अखंड रस उनको मिल सकता है। आत्मज्ञानियों को स्वरूपानंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भक्तों को जो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद मिलता है वो और किसी को नहीं मिलता, केवल भक्तों को ही मिलता है। आह, कृष्ण भगवान को बांध दिया गया और वो अपने काम में लग गई। उस समय में भगवान ने अपने आंखों से देखा कि आहो आज बड़ा अच्छा मौका, ये दो वृक्ष है, इन दोनों वृक्षों का अब उद्धार करना है। ये दोनों वृक्ष नलकुबर और मणिग्रीव है, नारद जी के हिसाब से वृक्ष बने हुए हैं, नारद जी की बात सत्य करनी है, इन दोनों का उद्धार करना है। राजा ने पूछा, महाराज कितनी अमृत से भरी हुई कथा है और कैसे आप इसको समझा रहे हैं, कथ्यताम और कहो आप, इनको नारद जी का शाप क्यों मिला और कौन सा इन्होंने अपराध किया था। कहने लगे, देखो भाई अब ध्यान से सुनना हो, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कुबेर के दो बेटा थे, नलकुबर और मणिग्रीव, इन दोनों को भगवान शंकर की सेवा मिल गई। जब छोटे आदमी को किसी बड़े आदमी की सेवा मिलती है तब उसके मन में स्वाभाविक ही तरह तरह के विचार आते ही है, तो वो शंकर भगवान के अनुचर बन गए। तो उनको अभिमान हुआ कि हम सामान्य यक्षों जैसे नहीं है, हम कुछ बड़े हैं। एक बार वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे, मदिरा उन्होंने पी ली, इतने में ही उधर से नारद जी महाराज आए, साथ में स्त्रियां भी थी नहाने वाली। तो और तो सब बिचारे लज्जाशील होकर अपने अपने कपड़ों को पहनने में लग गए, लेकिन ये नलकुबर और मणिग्रह हुए मदिरा पिए हुए मस्ती में थे और शंकर के अनुचर होने का इनके मन में मद था, घमंड था। वे वैसे ही जल में कल्लोलियां कर रहे थे, जल फेंक रहे थे और नारद जी को कोई समझा नहीं उन्होंने। इतने में नारद जी वहां आए, उन्होंने देखा कि भाई इन दोनों का घमंड दूर हो जाए तो बिचारों का कल्याण हो जाए। तो नलकुबर और मणिग्रीव पर कृपा करने के लिए नारद जी ने कहा, ए दोनों रुद्रानुचरों हमारी बात सुनो, इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला यदि कोई दुर्गुण है तो ये धन का घमंड है। श्रीमदादा भी जात्यादिर यत्र स्त्री द्यूतम आसव है, लक्ष्मी के घमंड से मनुष्य शराब पीता है, लक्ष्मी के घमंड से यह मनुष्य स्त्री में आसक्त होता है, जुआ खेलता है, तरह तरह की हिंसा करता है, इसलिए लक्ष्मी का घमंड सबसे खराब है। अरे जिस शरीर को एक दिन कीड़े खा जाएंगे, जिस शरीर का एक दिन राख रूप होने वाला है, उस शरीर को प्राप्त करके और धन के घमंड में लोग नरकों की तैयारी करते हैं, कितने आश्चर्य की बात है। जो बहुत बड़े धन के घमंड के अंदर अंधे हुए हुए हैं, ऐसे लोगों की ये दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। यदि वे दरिद्र हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, क्योंकि दरिद्री व्यक्ति होता है वो घमंड नहीं करता, दरिद्री व्यक्ति है वो पाप नहीं करता है, उसके अंदर किसी प्रकार का मद नहीं है, वो जानता है कि पहले के किए हुए कर्मों के फल से आज मैं दरिद्र हूं, अब यदि मैं पाप करूंगा तो और मुझे कष्ट मिलेगा, इसलिए वो ऐसा काम नहीं करता है। लेकिन धन का घमंडी वो इस बात को सोचता ही नहीं है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, वो तो अपने मर्जी आई उस बात को धन के बल पर पूरा करना चाहता है। इसलिए मैं तो इस संसार में उन आदमियों को बहुत श्रेष्ठ मानता हूं कि जिनके पास दरिद्रता है, धन नहीं है, वे लोग सत्संग कर सकते हैं, वे लोग भगवान की कथा में जा सकते हैं, वे लोग सत्कर्म कर सकते हैं। और जो समदर्शी महात्मा है उन लोगों की भी विशेष कृपा गरीब आदमियों को मिलती है, धनी आदमी वैसी कृपा ले नहीं सकते हैं। उपेक्षे किम धन स्तंभ असद भी रसदाश्रय, ऐसे लोग जो मदोन्मत्त रहते हैं उन लोगों की चिकित्सा करना, उनका इलाज करना मेरा काम है। तो तुम दोनों को मैं शाप देता हूं कि जाओ तुम दोनों वृक्ष होकर के रहोगे और वृक्ष होकर के एक जगह खड़े रहोगे, अब तुम ऐसा अन्याय नहीं कर पाओगे। 100 दिव्य वर्षों के बाद जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर वसुदेव के यहां अवतार लेकर वासुदेव के नाम से विख्यात होंगे और जब उनका अंग संग होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा नारद जी महाराज ने उनको शाप के साथ वरदान दे दिया। नलकूबार और मणिग्रीव दोनों के दोनों अर्जुन वृक्ष बनकर के इसी व्रज के अंदर उग गए थे। कहते हैं अब भगवान नारद जी की वाणी सत्य करने के लिए उन दोनों वृक्षों के बीच में जाने लगे। अब ऊखल के साथ बांध दिया, ऊखल भी साथ में है और भगवान ऊखल को भी साथ में लिए हुए दोनों वृक्षों के बीच में से निकले। जो ही उन वृक्षों में से निकले, ऊखल है वो वृक्षों के अंदर अटक गया। अटकते ही भगवान ने जोर लगाया, जोर लगाते वो वृक्ष थे वो धड़ाम से गिर गए और वृक्षों के गिरने पर उनमें से एक दो बहुत दिव्य पुरुष निकले, वही नलकूबर और मणिग्रीव उनमें से निकले। हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे कृष्ण, संपूर्ण प्राणियों की आप आत्मा हो, कार्य कारणात्मक जगत को आप उत्पन्न करने वाले हो, प्रकृति महान ये सब कुछ आप ही का रूप है, असंख्य आपके अवतार हैं, लेकिन कोई भी आपकी बराबरी कर नहीं सका है सृष्टि के अंदर। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। नारद जी ने हमारे पर कितनी कृपा की कि आपके दर्शन हो गए। वाणी की सफलता आपका गुणानुवाद करने में है, कान की सफलता आपके विषय में सुनने में है, और हाथों का उपयोग आपके लिए कर्म करने में है, और हमारा मन है वो आपके चरणों में लगा रहे, बस यही इसका सच्चा उपयोग है। हम आपको प्रणाम करते हैं और हमारी दृष्टि से हम आपके शरीर को और आपके भक्तों के शरीर को देखते रहे, इसके अलावा संसार में कोई सार वस्तु नहीं है। गोकुलेश्वर भगवान ने हंसते हुए कहा। हंसते हुए क्यों कहा? हंसते हुए इसलिए कहा, देखो भगवान की हंसी में कई कारण है। भगवान हंसते हुए कहने लगे, देखो भाई, ऐसे भी कोई प्रार्थना करने वाले मिलेंगे कि मैं तो हूं बद्ध और तुम हो मुक्त? सदा हमने देखा है कि जो बद्ध होता है वही मुक्त की स्तुति करता है, और तुम मुक्त होकर आज बद्ध की स्तुति कर रहे हो। इस बात ऐसा विपरीत क्रम देख करके भगवान को हंसी आई। भगवान कहने लगे, देखो भाई दयालु नारद जी ने कितनी आप पर कृपा की है, आप तो लक्ष्मी के मद में घमंडी हो गए थे और इस कारण से संतों का आपने तिरस्कार किया, लेकिन संत कितने दयालु होते हैं। संत जो होते हैं वो मत कृतात्म नाम अपनी आत्मा को मेरे में अर्पित कर देते हैं, अतः जैसे मैं किसी का अनिष्ट नहीं करता हूँ, ऐसे ही संतों के वचन से कभी किसी का अनिष्ट नहीं होता है। दर्शनान्नो भवेद बंध है, संतों के दर्शन से उनके वचनों से कभी बंधन होता नहीं है। देखो आपको कोई साधना करनी नहीं पड़ी। संतों ने कहा कि जब तुम्हारे बीच में भगवान आएंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुमने कोई तपस्या की नहीं, कोई योग साधना की नहीं, तुमने मुझे याद नहीं किया, तुमको मैंने याद किया है। तो भाई तुम्हारे कल्याण की चिंता मुझे थी, इसका कारण क्या? ये संतों का ये शाप जिसको तुम मान रहे हो ये वरदान ही कारण है। शाप तो तुम मान रहे हो, है वो वरदान। तो भाई संतों के दर्शन से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता है। अब जाओ अपने स्थान पर जाओ और मेरे प्रेम के अंदर सदा डूबे रहो। इतने दिन तो वारुणी मदिरा के नशे में रहे, अब मेरे प्रेम के नशे में रहो, देखो हमारा प्रेम का नशा कितना विलक्षण है। इस प्रकार से वे दोनों चले गए। इधर इन वृक्षों के धड़ाम से गिरने की आवाज आई, देखा अरे वृक्ष गिर गए, क्या बात है क्या बात है, कन्हैया कन्हैया कहाँ गया? देखा कन्हैया तो उन दोनों वृक्षों के बीच में हंस रहा है, खेल रहा है। बालकों ने कहा, देखो जी आप हमारी बात पर विचार तो करते नहीं हो, श्रद्धा करते नहीं हो, हम आपको बतावे कि ऊखल के अटक जाने पर जब इस कन्हैया ने जोर लगाया तो कन्हैया के जोर से दोनों के दोनों वृक्ष गिर गए। बालकों की बात सुनकर के सब हंसने लगे, देखो ये छोटे छोटे बालक है, ये देखो कैसी कैसी बात करते हैं। बालकों की बात पर किसी ने श्रद्धा नहीं की। इतने में ही नंद बाबा आ गए और नंद बाबा ने उनको डोरियों से खोल दिया। भगवान हंसने लग गए। भगवान कहते हैं कि नंद जी, दूसरे ही तो मेरे को बांधते हैं और दूसरे ही मेरे को खोलते हैं। यशोदा जी ने तो मेरा बंधन किया और आपने मेरा बंधन खोला। न तो मेरे में बंधन है न मेरे में मोक्ष है, ये जीव ही मुझ में बंधन और मोक्ष की कल्पना किया करता है। इस प्रकार से नंद जी महाराज अपने बालक को गोद में लिए और फिर बड़े आनंद के साथ में अपने घर चले आए। कहते हैं ये गोपियां थी, कभी कभी कन्हैया को अपने घर ले जाती। अपने घरों में ले जाकर झुंड की झुंड गोपियां चारों तरफ से कृष्ण को घेर लेती और घेर करके कहती कि देखो कृष्ण तुम थोड़ा नाचो, हम तुमको थोड़ा मक्खन देंगे। कितना मक्खन दोगे? कि एक बार नाचोगे तो इतना मक्खन देंगे, दो बार नाचूंगा तो कि इतना इतना दो बार देंगे, और नाचूंगा तो जितनी बार नाचोगे हम आपको उतना बार उतने बार ये देंगे। तो अच्छी बात है, मैं नाचता हूं। अरे विभर्तिकाया विभर्ति क्वचित आज्ञप्त, कहते हैं उस समय में गोपियां चारों तरफ से घेरी हुई और कृष्ण भगवान नाचते थे, उद्गायती, कभी गाते थे, नाचते थे, और बाहु क्षेपन चकुरते, बाहों को यूं ऊपर नीचे करते थे। इतना उनको आनंद आता था गोपियों को कि भाई उस समय में सब गोपियां उनके ऊपर हंसती हंसती लट्टू हो जाती, अपने गोद में ले लेती, उस बालक को चूमने लग जाती थी। इतना प्यार उस बालक के ऊपर गोपियों का हो गया। ब्रजस्यो वाह वही हर्षम भगवान बाल चेष्टित ही, भगवान ने बालकियों की बाल चेष्टा करके सबका मन मोह लिया था। इसी ब्रज के अंदर एक फल बेचने वाली थी। एक बार उसने यशोदा जी के घर के सामने देखा, घर का घर के सामने आई, उसने देखा यशोदा जी की गोद में एक बहुत सुंदर बालक है। बड़ी भाग्यवती है ये यशोदा जी जिनको ऐसा बालक माँ कहकर के बोलता है। आहा यही कन्हैया एक बार मुझे माँ बोल दे तो मैं निहाल हो जाऊं। फल बेचने वाली का काम फल बेच करके अपना जीवन गुजारा करना था। अब वो विचार करने लगी और गलियों में नहीं फिरना है, केवल इस यशोदा जी के घर के गली के सामने आवाज लगानी है। तो उसने अपने टोकरी के अंदर फल ले लिए, रोज आती फल ले लो फल ले लो फल ले लो। इतना चिंतन करती कन्हैया का, तो चिंतन करते करते कन्हैया ले लो फल ले लो कन्हैया ले लो फल ले लो, उसको ये याद ही नहीं रहती बात कि मैं कन्हैया ले लो कैसे बोल रही हूँ, फल ले लो की जगह फल ले लो ही बोलना चाहिए, कन्हैया ले लो कैसे बोल, याद नहीं रहती। तो भगवान का भी जीव मचल गया। भगवान ने माँ से कहा, माँ वो फल लाने वाली आई, जरा मैं उसके पास जाऊंगा और फल लाऊंगा। नहीं बेटा मैं साथ में चलूंगा, मैं अकेला ही जाऊंगा, वो कोई दो के साथ थोड़े ही आती, वो भी तो अकेली आती है, मैं भी अकेला ही जाऊंगा, तो क्या लाएगी मैं ले आऊं। नहीं माँ मैं जाऊंगा। तो अच्छी बात है, अपने हाथ में थोड़े से दाणे ले लिए अनाज के, चावल वगैरह अपने हाथ में ले लिए, दौड़े दौड़े कन्हैया गए। वो कहे कन्हैया ले लो फल ले लो कन्हैया ले लो, जितने में ही तो वो बालक बाहर आ गए, कितने ही तो दाणे बिखर गए भगवान के अंजलि में से। और जो ही वो सामने गई, आज देखा कि कन्हैया अकेला मिला है, इतना प्रेम से उसके आंसू आने लगा, हा कन्हैया के मैंने पूरे दर्शन किए हैं। कन्हैया ने कहा फल दोगे? देखो सारे विश्व को फल देने वाले भगवान फल मांग रहे हैं, फल दोगे? वो तो बोल नहीं सकी, वो बैठ गई, फल फल की टोकरी नीचे उतारी, जितने दौड़े दौड़े भगवान आए और उसकी गोद में चढ़ गए और उसके चिपट करके उसके मुंह के पास मुंह रख करके बोले माँ, ऐसा बोले। अब उसने तो अपने गोद में उनको रख लिया और अपने हाथ में जो धान था वो धान उसकी टोकरी में रख दिया। वो अब टोकरी के अंदर धान नहीं रहा, उसको तो बड़े बड़े रत्न मिल गए। इस प्रकार से वो फल बेचने वाली को आज फल बेचने का सबसे बड़ा फल मिल गया, निहाल हो गई, उसको कृष्ण गोद में बैठकर माँ बोल दिए थे, उसका जो भांड था उसको रत्नों से भर दिया। इस प्रकार से भगवान की लीला थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इतने खेलने में मस्त रहते थे, कभी कभी भूल जाते थे, भोजन करना भी भूल जाते थे, सखाओं के बीच में बैठते, फिर यशोदा जी रोहिणी जी जाती, बड़ी मुश्किल से उनको भोजन कराती थी। एक बार सब नंद वगैरह बैठे हुए थे, इनमें एक बूढ़े उपनंद नाम के एक गोप थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई अब अपने को ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहिए, जितना जल्दी हो सके वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस कृष्ण के चर्चाओं से कंस के पास में सब वृत्त जाते हैं, समाचार जाते हैं, और हमारे इस ब्रज के अंदर तरह तरह की आपत्ति आ रही है, इसलिए इस स्थान को छोड़ें और अब वृंदावन चलें। यमुना नदी वहाँ है ही, हमारे पास छकड़े हैं ही, छकड़ों के यहाँ रहेंगे और गायों को वहाँ चराएंगे, वृंदावन की भूमि में घास फूस की कोई कमी नहीं है, वहाँ अपने को रहना चाहिए। तो क्या अच्छी बात है, सारे के सारे गोप अपने छकड़ों में सामान लेकर के वहाँ से रवाना हुए। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी माता के साथ छकड़े में बैठ गए, छोटे छोटे बालक कोई वेणु बजा रहा है, कोई पत्ते तोड़ रहा है वृक्षों के, एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। इस प्रकार से वे वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन जाने के बाद वे वहां पर रहने लगे। अब एक दिन की बात है, भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। भगवान खेल रहे थे उस समय में एक वत्सासुर आया, एक बछड़ा बनकर के एक असुर आया। असुर आया और भगवान जिन बछड़ों के साथ खेल रहे थे उनके अंदर वो भी आकर के खड़ा हो गया। साथी लोग थे, बलराम जी भी वहीं थे। उस समय में भगवान ने बलराम जी को आंखों से समझा दिया कि ये बछड़ा है, ये स्पेशल बछड़ा है, ध्यान रखना। तो क्या अच्छी बात है, बलराम जी भी सावधान, भगवान भी सावधान। बछड़ों के साथ खेलते खेलते भगवान आए और वो जो राक्षस जो बछड़ा बना हुआ था उसके सिर पर हाथ फेर लगे। आहा, ये बछड़ा तो बड़ा अच्छा है, इसका कान बड़ा अच्छा है और इसका मुंह लेके देखना, देखो मुंह कितना अच्छा है, फिर उसके पैर देखो, छोटे छोटे पैर कितने अच्छे हैं, और देखो सखाओ इसकी पूंछ कितनी अच्छी है, इसके ये पैर कितने अच्छे हैं। ऐसे भगवान ने बहुत होशियारी के साथ पूंछ और पीछे के पैर दोनों पकड़ करके उसको ऊपर उठाया और जोर से घुमाया, और घुमा करके जो ही उसको वहां पृथ्वी पर पटका तो उसका राक्षस रूप सबके सामने प्रकट हुआ और वही राक्षस रूप वहां पर प्राण निकल के निष्प्राण होकर के वहां पर गिर गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की कि महाराज बड़ा अच्छा किया, ये वत्सासुर मारा गया। ऐसे ही एक राक्षस और था, वो था बकासुर। वो बगुले का रूप बना करके एक दिन यमुना नदी के अंदर बैठ गया है। यमुना नदी में बैठ गया और उसने मुंह फैला लिया, ऊपर कर लिया। अब ये बलराम जी और दूसरे बालक सब उसके अंदर चले गए। उसके अंदर गए, वो प्रतीक्षा कर रहा था श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण देखे कि अरे इस असुर के पेट में हमारे सारे के सारे साथी चले गए। तो भगवान भी एक बार अनजाने से बन करके उसके अंदर चले गए और जय ही वो भगवान को यूं खाने लगा, क्यों ही भगवान ने वहां पर उसके तालू के अंदर आग पैदा कर दी। वो एकदम घबराया, जैसे उसका कोई मुंह जल रहा हो। भगवान को वापस उसने निगल दिया। निगल जाने के बाद फिर खाने के लिए उसने अपनी चोंच को फाड़ा तो भगवान ने ऊपर के चोंच को ऊपर अपने दाहिने हाथ से और नीचे की चोंच को अपने बाएं हाथ से पकड़ करके उसके उसी समय में दो टुकड़े कर दिए और अपने अमृतमय दृष्टि से जो उसके अंदर गए हुए थे उन सबको जिला दिया। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की। प्रत्यागतमिव सौख्याद एक क्षण तय त्रिशते क्षण। उन गोपों को, बालकों को ऐसा लगा कि कोई हम यूं ही बेहोश हो गए थे, कोई नींद आ गई थी और हम जीवित हो गए। वास्तव में भगवान की कृपा से वो जीवित हुए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब भाई आप लोग बहुत सावधानी से कथा सुनेंगे। एक ऐसी कथा आ रही है जिस कथा के अंदर स्वयं भगवान की इस रूपावली में परीक्षित सुखदेव जी महाराज निमग्न हो गए थे। बड़ी मुश्किल से ये कथा कही है सुखदेव जी महाराज ने, ऐसी एक प्रेम की लीला है। आप लोग बहुत शांति के साथ सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त बालकों से कहा कि भाई देखो अब कल का भोजन है वो हमारा वन भोजन होगा। वन भोजन में सब अपने अपने घरों से भोजन लाएंगे, घरों में भोजन नहीं करेंगे और वन में भोजन करेंगे। वन में भोजन करके और हम हमारे एक विशेष प्रेम को बढ़ाएंगे और जितना भी वन में हम लोग पहुंचेंगे साथी लोग, तो अपने अपने साथ में जो सामान है वो सामान लेकर के और इकट्ठा करके सभी का भोजन सब करेंगे। अपना अपना भोजन नहीं करेंगे, सबकी रोटियों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे, सबके दही को, सबके साग को, सबके अचार को एक साथ इकट्ठा करके सब आपस में मिलकर के हम भोजन करेंगे। उन बालकों ने जाकर अपनी माताओं से कहा कि माँ कल का भोजन होगा हमारा जंगल में होगा, हम लोग रोज यहाँ से कलेवा करके जाते हैं, कल हम कलेवा नहीं करेंगे, हमारा भोजन वहीं होगा और सबका भोजन सब करेंगे, तो हमारे घर का भोजन कन्हैया भी करेगा। अब उन माताओं के मन में आया कि ओहो हमारे घर का भोजन कृष्ण करेगा। सब माताओं के मन में आया, उनको रात भर प्रेम से नींद नहीं आई और फिर जल्दी जल्दी सुबह उठ करके निवृत्त होकर के भोजन बनाया, रोटी बनाई, दही दिया, मक्खन दिया और जो कुछ देना था सब सामग्री साथ में कर दी लकड़ी के अंदर बांध दी गई, उसमें कपड़े में बांध करके लकड़ी के साथ छींका बना करके अपने अपने बच्चों को दे दिया। साहब उनके मन में यही है, गोपियों के मन में, कि आज हमारे घर का भोजन कृष्ण करेगा, हमारे घर का भोजन कृष्ण करेगा। हजारों हजारों बछड़ों को ले लेकर के और ये सब के सब गोप बालक एक जगह इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के देखे कि हम सब साथी आ गए हैं, हर हमारे बछड़े भी आ गए हैं, तो बछड़ों को आगे हांकते हुए वे जंगल के अंदर चले गए। उन बालकों के साथ में कृष्ण का बड़ा प्रेम था। कृष्ण यदि कभी आगे चले जाते तो वे बालक कहते, देखो कृष्ण वहां है, मैं पहले दौड़ के उसको छूता हूं। वो कहता, मैं पहले जाकर छूता हूं। अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे, तो दौड़ते दौड़ते जाते, कोई जाकर छू देता, छू के वापस लौट के आता, हंसता, हमने पहले छुआ है, हमने पहले छुआ है। कोई वेणु बजा रहा था और कोई जल के अंदर मेंढक थे उनके साथ खेल रहा था और कोई पत्तों को लेकर के सीटी बजा रहा था। कीश बालान आरोहंतश्च तैद्रुमान, कहते हैं कोई कोई ऐसे थे वृक्षों के ऊपर चढ़ जाते, जोर जोर से किलकारियां लगाते, कोई कोई ऊंचे वृक्ष से कूद करके और हंसते थे। इस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ में हंसी विनोद कर रहे थे। परीक्षित, बड़े बड़े ज्ञानियों का जो ब्रह्मानंद है, बड़े बड़े भक्त जिनकी शरण में होते हैं, वही श्री कृष्ण आज माया से बालक बने हुए हैं और उन साथियों ने उसको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर नहीं माना, उनको तो यशोदा नंदन नंद नंदन और हमारा ही साथी श्री कन्हैया दिख रहा था। जिनके चरण कमलों के रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक जन्मों तक आराधना की है, फिर भी वे उनके लिए प्राप्त नहीं हुए और वे भगवान आज इन सखाओं के बीच में खेल रहे हैं। इन ब्रजवासियों के भाग्य की हम क्या महिमा कह सकते हैं। तो ये सब के सब उस जंगल के अंदर जा रहे थे, आगे जाकर देखा एक बहुत बड़ा सांप है और वो सांप अपना मुंह खोला हुआ है। उस सांप के मुंह से जहरीली जहरीली हवाएं निकल रही है और बड़ी दुर्गंध आ रही है, कई प्राणियों को खाने के कारण से उसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी। अमृत पिए हुए देवता लोग भी इस दैत्य के मरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे भी इसको मार नहीं सके। अघासुर था जो सांप बन करके वहां पर पड़ा हुआ था। अघासुर ने देखा कि मेरे भाई बहन को मारने वाला, बकासुर को मारने वाला, पूतना को मारने वाला ये कन्हैया है, आज इस कन्हैया को मेरे भाई और बहन को मारने का फल चखाना है। ऐसा विचार करके वो अपने मुंह को फाड़ करके वहां पर पड़ा हुआ था। इधर ये छोटे छोटे बालक खेलते 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 उसके पास में गए और पास में जाकर कहते हैं आपस में कि अरे मित्र, देखो देखो ये वृंदावन की कैसी शोभा है, देखो है तो वास्तव में सर्प, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, वृंदावन की शोभा है जो सर्प की तरह प्रतीत होती है।